अध्याय 37। वह चट्टान जिस पर चोट की गई। यह अध्याय गिनती 20 आयत 1 से 13 पर आधारित है। यह पहली बार हुआ था कि होरेब में उस चट्टान से वह जीवनदायी जल की नदी प्रवाहित हुई जिसने बीहर में इज़राइल को तृप्त किया। उनके भ्रमण के दौरान जहां भी आवश्यकता पड़ती थी उन्हें परमेश्वर की दया के चमत्कार के द्वारा जल प्रदान किया जाता था, लेकिन होरेब से जल बहता नहीं रहता था। जब भी उन्हें अपनी यात्रा में जल की आवश्यकता होती थी वहीं पर उनके पड़ाव के पास चट्टान की दरारों से जल फूट पड़ता था। वह मसीह था जिसने अपने वचन की सामर्थ्य से इज़राइल के लिए स्फूर्तिदायक सरिता के प्रवाह को संभव किया। सबने एक ही आत्मिक जल पिया क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। पहला कुरंथियों 10 आयत 4। वही सब सांसारिक और आत्मिक आशीषों का स्रोत था। मसीह जो सच्ची चट्टान है उनके भ्रमण के दौरान उनके साथ था। वह जब उन्हें निर्जल देशों में ले गया तब वे प्यासे न हुए। उसने उनके लिए चट्टान से पानी निकाला, उसने चट्टान को चीरा और जल बह निकला, निर्जल भूमि पर नदी बहने लगी। यशाया 48 आयत 21, भजन संहिता 105 आयत 41। वो चट्टान जिस पर चोट की गई मसीह का स्वरूप थी। इस प्रतीक के माध्यम से सबसे अधिक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सत्य सिखाए जाते हैं, जैसे कि चोट की गई चट्टान से जीवनदायी जल प्रवाहित हुआ, उसी प्रकार परमेश्वर का ताड़ा हुआ हमारे अपराधों के लिए घायल, हमारे अधर्म के कार्यों के कारण कुचला गया मसीह पतित वंश के उद्धार की सरिता का स्रोत है। जिस प्रकार चट्टानों पर एक बार चोट की गई उसी प्रकार मसीह को बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए बलिदान होना था। इब्रानियों 9 आयत 28। हमारे उद्धारकर्ता को दूसरी बार बलिदान नहीं होना था। जो उसके अनुग्रह की आशीष चाहते हैं उन्हें पश्चातापी प्रार्थना में अपनी हार्दिक अभिलाषा को व्यक्त करते हुए केवल यीशु के नाम से मांगने की आवश्यकता है। ऐसी प्रार्थना सेनाओं के यहोवा के सम्मुख यीशु के घावों को ले आएगी और फिर जीवनदायी लहू की धारा फिर से बह निकलेगी, जिसका प्रतीक इज़राइल के लिए बहाया गया जीवनदायी जल है। अत्यंत हर्षोल्लास के प्रदर्शन के साथ कनान में बस जाने के पश्चात निर्जल प्रदेश में चट्टान से जल के प्रवाहित होने को इज़राइलियों ने पर्व के रूप में मनाया। मसीह के समय में ये पर्व एक अत्यंत प्रभावशाली धर्म क्रिया बन गया था। मिलाप वाले तंबू के पर्व के अवसर पर जब पूरे देश के लोग यरूशलेम में एकत्रित होते थे तब ये धर्म क्रिया की जाती थी। पर्व के 7 दिनों में प्रत्येक दिन याजक संगीत और लेवियों की गायक मंडली के साथ सीलोम के सोते से सोने के बर्तन में जल लाने के लिए बाहर जाते थे। उनके पीछे पीछे उपासकों की भीड़ होती थी, जितने की जलधारा के निकट पहुंचकर जल को ग्रहण कर सकते थे, और प्रफुल्लित धुनें बजती रहती थीं, तुम आनंदपूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। यशाया 12 आयत 3। फिर याजकों द्वारा भरा हुआ जल पवित्र भजन, हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं, भजन संहिता 122 आयत 2, और तुरही के स्वर के बीच मंदिर में ले जाया जाता था। जल को होम बलि की वेदी पर उंडेल दिया जाता था, और इस दौरान जब स्तुति गान होता था वाद्य यंत्रों और तुरहियों की कर्ण प्रिय ध्वनि के साथ जनसाधारण जन जयकार के साथ उनके साथ मिल जाते थे। उद्धारकर्ता ने इस प्रतीकात्मक धर्म क्रिया का प्रयोग लोगों के मन उन आशीषों की ओर जो देने के लिए वह संसार में आया था आकर्षित करने के लिए किया। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है उसकी वाणी का उच्चारण मंदिर के प्रांगण में गूंज उठा। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र कहता है उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यूहन्ना कहता है उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। यूहन्ना 7 आयत 37 से 39। बंजर और सूखी भूमि में उमड़ता हुआ निर्जल प्रदेश का हरा भरा कराने वाला और मरने वालों को जीवन देने के लिए प्रवाहित होने वाला स्फूर्तिदायक जल उस पवित्र अनुग्रह का प्रतीक है जो केवल मसीह प्रदान कर सकता है, और ये उसी जीवन के जल के समान है जो शुद्ध करता है, थकान दूर करता है और प्राण को सबल बनाता है। जिसमें मसीह का वास होता है उसके अंदर अनुग्रह और शक्ति का कभी न समाप्त होने वाला सोता है। यीशु अपने खोजियों के पथ को उज्ज्वल करता है और जीवन को उत्साहित करता है। उसके प्रेम को यदि हृदय में ग्रहण किया जाए तो वह सनातन जीवन के लिए अच्छे कार्यों में फलवंत होता है। ये केवल उसी को आशीषित नहीं करता जिसमें ये फलवंत होता है, वरन ये जीवनदायी धारा अपने चारों ओर के प्यासे लोगों को तृप्त करने के लिए धार्मिकता के कार्यों और शब्दों में बहती है। मसीह ने याकूब के कुएं पर सामरी स्त्री के साथ वार्तालाप करते समय इसी उदाहरण का प्रयोग किया था। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यूहन्ना 4:14। मसीह इन दोनों का सम्मिश्रण है, वही चट्टान है, वही जीवनदायी जल है। यही सुंदर और अर्थपूर्ण उदाहरण संपूर्ण बाइबल में प्रयोग किए गए हैं। मसीह के आगमन से सदियों पूर्व मूसा ने उसकी ओर इज़राइल के उद्धार की चट्टान जैसे होने का संकेत दिया। व्यवस्था विवरण 32:15। भजन संहिता लिखने वाले ने उसे छुटकारा दिलाने वाला, जो चट्टान मुझसे ऊंची है, मेरे उद्धार का आधार, हृदय की चट्टान, मेरी शरण की चट्टान, मेरी चट्टान और मेरा गण कहा है। दाऊद के भजन में उसके अनुग्रह को हरी तराइयों के बीच शीतल सुखदाई जल के रूप में चित्रित किया गया है, जिसके किनारे स्वर्ग का चरवाहा अपनी भेड़ों को चराता है, और फिर वो कहता है, तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। भजन संहिता 19:174, 62:7, भजन संहिता 61:2, 71:26, 94:22, 23:2, 36:8-9। और बुद्धिमान पुरुष कहता है, मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल और उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। नीति वचन 18:4। यिर्मयाह के लिए यीशु बहते जल का सोता है, और जकरिया के लिए वो मलिनता और पाप धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता है। यिर्मयाह 2:13, जकरिया 13:1। यशाया उसका वर्णन सनातन चट्टान और तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया के रूप में करता है। यशाया 26:4, 32:2। और इज़राइल के लिए प्रवाहित जीवनदायी धारा का स्पष्ट रूप से स्मरण कराते हुए वो अमूल्य प्रतिज्ञा का उल्लेख करता है, जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी न पाएं और उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा, मैं इज़राइल का परमेश्वर उनको त्याग न दूंगा, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। निमंत्रण दे दिया गया है, अहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। यशाया 41:14, 44:3, यशाया 55:6, 55:1। पवित्र वचन के अंतिम पृष्ठों में ये निमंत्रण गूंजता है, जीवन के जल की नदी जो यशब की तरह स्वच्छ है, परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलती है और युगों से अनुग्रहकारी बुलाहट सुनाई दे रहा है, जो प्यासा हो वो आए और जो कोई चाहे वो जीवन का जल ग्रहण कर ले। प्रकाशित वाक्य 22:17। इब्री सेना के कादेश पहुंचने के ठीक पहले छावनी के निकट इतने वर्षों से जो जीवनदायी जल बह रहा था वो थम गया। ये फिर से लोगों को परखने का प्रभु का प्रयोजन था। उन्हें प्रमाणित करना था कि वे परमेश्वर के ईश्वरत्व में विश्वास करेंगे या अपने पितरों के अविश्वास को अपनाएंगे। अब वे कनान की पहाड़ियों को देख सकते थे, कुछ दिन और चलने के पश्चात वे प्रतिज्ञा के प्रदेश की सीमा पर पहुंच जाने वाले थे। वह एदोन से, जो एसाव के वंशजों का था और जिसमें से कनान का निर्धारित मार्ग होकर निकलता था, कुछ ही दूरी पर थे। मूसा को निर्देश दे दिया गया था, तुम घूमकर उत्तर की ओर चलो और तू प्रजा के लोगों को मेरी यह आज्ञा सुना कि तुम सेईर के निवासी अपने भाई एसावियों की सीमा के पास से होकर जाने पर हो और वे तुमसे डर जाएंगे। तुम उनसे भोजन मोल लेकर खा सकोगे और मोल देकर कुओं से पानी भरकर पी सकोगे। व्यवस्था विवरण 2 आयत 3-6। यह निर्देश यह समझाने के लिए पर्याप्त थे कि उनके पानी का प्रयोजन क्यों समाप्त कर दिया गया था। वे कनान देश को एक सीधे मार्ग पर उपजाऊ और जलयुक्त देश में से होकर निकलने को थे। परमेश्वर ने उन्हें एदोम में से होकर निकलने वाली बाधा रहित यात्रा, भोजन वस्तु खरीदने के अवसर और सेना के लिए पर्याप्त जल का आश्वासन दिया था। जल के चमत्कारी प्रवाह का थम जाना उनके बीहर में भटकने के अंत के रूप में प्रसन्नता का कारण होना चाहिए था। यदि वे अविश्वास में अंधे न हुए होते तो वे यह समझ जाते। लेकिन जिस अवसर को परमेश्वर की प्रतिज्ञा के पूरा होने का प्रमाण होना चाहिए था, उसे संदेह करने और कुड़कुड़ाने का अवसर बना दिया गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो लोग इस आशा को खो चुके थे कि परमेश्वर उन्हें कनान का स्वामित्व देगा और वे बीहड़ में मिली आशीषों के लिए चिल्लाने लगे। कनान में प्रवेश करने से पूर्व उन्हें यह प्रमाणित करना था कि वे परमेश्वर की प्रतिज्ञा में विश्वास करते थे। उनके एदोम पहुंचने से पहले पानी का बहना बंद हो गया। यहां उनके पास दृष्टि के बजाय विश्वास के द्वारा चलने का अवसर था। लेकिन पहली परीक्षा ने उसी उपद्रवी कृतज्ञहीन भावना को विकसित किया जैसी उनके पितरों द्वारा प्रदर्शित की गई थी। जैसे ही छावनी में पानी के लिए हाहाकार सुनाई पड़ा, वे उनके लिए इतने वर्षों से आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हाथ को ही भूल गए और सहायता के लिए परमेश्वर के पास जाने के बजाय अपनी निराशा में ये कहकर परमेश्वर के विरुद्ध बड़बड़ाने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। गिनती 20 आयत 3। इसका तात्पर्य ये है, वे चाहते थे कि वे भी उस संख्या में होते जो कोरह के विद्रोह में नष्ट हो गए थे। उनकी चिल्लाहट मूसा और हारून की ओर थी, तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहां मर जाएं? और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुंचाया है? यहां तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं है, यहां तक कि पीने का कुछ पानी भी नहीं है। तब अगुवे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे। फिर से यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया और मूसा को निर्देश दिया गया, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते हुए उस चट्टान से बात कर, तब वो अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से जल निकालकर मंडली के लोगों के लिए ला। दोनों भाई मंडली के आगे आगे चले। मूसा के हाथ में परमेश्वर की लाठी थी। अब वे वृद्ध हो चले थे। अत्यंत लंबे समय से उन्होंने इसराइल के हठीलेपन और अतिक्रमण को सहन किया था, लेकिन अब अंत में मूसा का धैर्य टूट गया। उसने कहा, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? और चट्टान से बात करने के बजाय जैसे कि परमेश्वर ने आदेश दिया था, उसने लाठी 2 बार चट्टान पर मारी। चट्टान में से मंडली को संतुष्ट करने के लिए पानी बहुतायत से फूट निकला, लेकिन एक गंभीर गलती की गई थी। मूसा ने चिड़चिड़ी भावना से वो वाक्य कहा था, उसके कहे शब्द पवित्र क्रोध की अभिव्यक्ति ना होकर मानवीय आवेग का वचन था, क्योंकि परमेश्वर का अपमान हुआ था। हे दंगा करने वालों सुनो, उसने कहा था। यह आरोप सही था, लेकिन सत्य को भी आवेग या अधीरता से नहीं कहना चाहिए। जब परमेश्वर ने मूसा को इसराइल पर उनके विद्रोह का दोषारोपण करने को कहा, तो वो आज्ञा उसके लिए कष्टदायक थी और इसराइलियों के लिए भी असहनीय थी, लेकिन परमेश्वर ने संदेश देने में उसकी सहायता की। लेकिन जब मूसा ने उन पर आरोप लगाना स्वयं के ऊपर ले लिया, तो उसने परमेश्वर के आत्मा को दुख पहुंचाया और लोगों के लिए हानिकारक ठहरा। उसमें धैर्य और आत्मसंयम का अभाव स्पष्ट था। इस प्रकार लोगों को प्रश्न करने का अवसर मिल गया कि उसका पहले वाला तरीका परमेश्वर के निर्देशन में था या नहीं, और अपने पापों को पाप न मानने का बहाना मिल गया। वे कहने लगे कि उसका तरीका प्रारंभ से ही आलोचना और आक्षेप का विषय रहा था। अब उन्हें दास के माध्यम से भेजे गए परमेश्वर की असहमति या फटकार का तिरस्कार करने का मनचाहा बहाना मिल गया।
मूसा ने परमेश्वर में अविश्वास प्रकट किया। क्या हम जल लेकर आए? उसने प्रश्न किया, मानो परमेश्वर वह नहीं करता जिसकी उसने प्रतिज्ञा की थी। प्रभु ने दोनों भाइयों से कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया, मुझे इसराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। जब पानी का बहना थम गया, लोगों के बड़बड़ाने और विद्रोह से परमेश्वर की प्रतिज्ञा के परिपूर्ण होने में स्वयं उनका विश्वास डगमगा गया था। पहली पीढ़ी को बीहर में विनाश का दंड उनके अविश्वास के कारण मिला था, लेकिन उनकी संतान में वही भावना प्रकट हुई। क्या ये भी प्रतिज्ञा को पाने में असफल होंगे? थके हुए और निराश मूसा और हारून ने लोकप्रिय भावना के प्रवाह को रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया था। यदि उन्होंने स्वयं परमेश्वर में अटल विश्वास प्रकट किया होता, तो उन्होंने इस विषय को लोगों के सम्मुख ऐसे प्रकाश में रखा होता कि वे इस परीक्षा में खड़े उतरने के योग्य हो जाते। न्यायियों के तौर पर उनमें निहित अधिकार के निर्णयात्मक तत्पर अभ्यास से वे लोगों की कुड़कड़ाहट को शांत कर सकते थे। ये उनका कर्तव्य था कि उनके लिए काम करने हेतु परमेश्वर के कहने से पहले स्थिति में सुधार लाने के लिए वे अपनी क्षमतानुसार प्रत्येक प्रयत्न करें। यदि कादेश में बड़बड़ाहट पर तत्परता से रोक लगा दी गई होती, बुराइयों का कितना लंबा ताता बंधने से रोका जा सकता था।
अपने अविवेकपूर्ण कृत्य से मूसा ने उस सबक की नैतिक शक्ति समाप्त कर दी जो परमेश्वर सिखाना चाहता था। चट्टान मसीह का प्रतीक था। जिस पर एक बार चोट की गई, ठीक उसी प्रकार मसीह को भी एक बार बलिदान होना था। दूसरी बार चट्टान से केवल बात करने की आवश्यकता थी, जैसे कि हमें आशीषों को केवल यीशु के नाम से मांगने की आवश्यकता होती है। चट्टान पर दूसरी बार चोट करने से मसीह के उस सुंदर स्वरूप का महत्व नष्ट हो गया था। इससे बढ़कर मूसा और हारून ने वह अधिकार धारण कर लिया था जो केवल मसीह का है। ईश्वरीय बीच बचाव की आवश्यकता ने अवसर को धार्मिक क्रिया का रूप दे दिया, और इसराइल के अगुवों को इसे परमेश्वर के प्रति आदर से लोगों को प्रभावित करने के लिए और उसकी अच्छाई और सामर्थ्य में उनके विश्वास को दृढ़ करने के लिए संशोधित करना चाहिए था। जब उन्होंने क्रोधित होकर कहा, क्या हम इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालकर लाए? उन्होंने स्वयं को परमेश्वर के स्थान पर रख दिया, मानो सामर्थ स्वयं उन्हीं में विद्यमान थी, जबकि वे मानवीय दुर्बलताओं और भावावेश से युक्त मनुष्य थे। लोगों की लगातार बड़बड़ाहट से थका हुआ मूसा अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को भूल गया और ईश्वरी सामर्थ्य के अभाव में उसके लिए मानवीय दुर्बलता के प्रदर्शन द्वारा अपने कीर्तिमान को क्षति पहुंचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। जो व्यक्ति अपना कार्य संपन्न करने तक शुद्ध, दृढ़ और निस्वार्थ रह सकता था, पराजित हो चुका था। इसराइल की प्रजा के सम्मुख परमेश्वर का अनादर हुआ था, उस समय जब उसकी अत्यधिक प्रशंसा और महिमा की जानी चाहिए थी।
इस अवसर पर परमेश्वर ने उन पर दंडाज्ञा की घोषणा नहीं की जिनकी युक्ति ने मूसा और हारून को इस प्रकार उत्तेजित किया था। सारी ताड़ना अगुवों को मिली। जो परमेश्वर के प्रतिनिधियों के रूप में खड़े हुए थे, उन्होंने उसका मान नहीं रखा था। मूसा और हारून स्वयं व्यथित थे इस तथ्य को अनदेखा कर कि लोगों का बुड़बुड़ाना उनके प्रति नहीं वरन परमेश्वर के विरुद्ध था। अपने ही बारे में सोचने से, स्वयं से सहानुभूति रखकर वे अनजाने में पाप में पड़ गए और लोगों के सम्मुख उनके पाप परमेश्वर के सम्मुख रखने में असफल रहे। तत्काल घोषित दंडाज्ञा अत्यंत अपमानजनक और कठोर थी, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इसराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। विद्रोही इसराइल के साथ उन्हें यर्दन पार करने से पहले मृत्यु को प्राप्त होना था। यदि ताड़ना और ईश्वरीय चेतावनी के होते हुए मूसा और हारून आवेशपूर्ण भावना में लिप्त होते या स्वाभिमान को संजोए रखते तो उनका दोष और भी गंभीर हो जाता। लेकिन उन पर स्वैच्छिक या जानबूझकर किए गए पाप का आरोप नहीं लगा, क्योंकि वे अचानक आई परीक्षा में पड़ गए थे और उनका पश्चाताप हार्दिक और तत्काल था। परमेश्वर ने उनके प्रायश्चित को स्वीकार किया। यद्यपि उनका पाप लोगों में क्षति पहुंचा सकता था, उसकी दंडाज्ञा को क्षमा नहीं किया जा सकता था।
मूसा ने अपने दंड को गुप्त नहीं रखा, बल्कि लोगों से कहा कि क्योंकि वह परमेश्वर को महिमा पहुंचाने में असफल रहा, इसलिए वह उनका प्रतिज्ञा के देश में नेतृत्व नहीं कर सकता था। उसने उन्हें उसको दी गई दंडाज्ञा पर ध्यान देने को कहा और उसके बाद मनन करने को कहा कि जिस दंडाज्ञा के लिए वे अपने पापों के कारणवश दोषी थे, उसका आरोप एक तुच्छ मनुष्य पर लगाकर बड़बड़ाने को परमेश्वर किस तरह सहन करेगा। उसने उन्हें यह भी बताया कि किस तरह उसने दंडाज्ञा की क्षमा के लिए परमेश्वर से विनती की थी, लेकिन उसकी विनती स्वीकार नहीं की गई। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया और मेरी न सुनी। व्यवस्था विवरण 3:26।
परीक्षा या कठिनाई के प्रत्येक अवसर पर इसराइली मूसा पर मिस्र से उन्हें लेवा लाने का आरोप लगाने को तत्पर रहते थे, मानो परमेश्वर की इस विषय में कोई भूमिका नहीं थी। अपनी सभी यात्राओं के दौरान जब मार्ग में आई कठिनाइयों की शिकायत की थी और अपने अगुओं के विरुद्ध कुड़कुड़ाए थे, तब मूसा ने कहा था, तुम्हारा बुड़बुड़ाना परमेश्वर पर है, वो मैं नहीं वरन परमेश्वर है जिसने तुम्हें छुटकारा दिलाया है। लेकिन चट्टान के सम्मुख उसके ये अविवेकपूर्ण शब्द, क्या हम जल निकाल कर लाएं, उन पर लगाए गए लोगों के आरोप का वास्तविक अंगीकार था और उनके अविश्वास की पुष्टि करता था और उनकी बुड़बुड़ाहट को सही ठहराता था। प्रतिज्ञा के देश में मूसा का प्रवेश निषेध कर परमेश्वर उनके मनों से ये प्रभाव हमेशा के लिए मिटा देना चाहता था। इसमें अचूक प्रमाण था कि मूसा उनका अगुवा नहीं था, वरन वो स्वर्गदूत जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी बात मानना, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। निर्गमन 23:20-21।
मूसा ने कहा, यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया। सभी आंखें मूसा पर लगी हुई थीं और उसके पाप की परछाई परमेश्वर पर पड़ी, जिसने उसे अपने लोगों का अगुआ नियुक्त किया था। पाप पूरी प्रजा को ज्ञात था और यदि इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता तो वो इस धारणा को जन्म देता कि महत्वपूर्ण पदों वालों में उत्साहत की अति की स्थिति में अविश्वास और अधीरता को क्षमा किया जा सकता है। लेकिन जब ये घोषणा की गई कि उस एक पाप के कारणवश हारून और मूसा कनान प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन लोग जान गए कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं लेता और ये कि वो आज्ञा का उल्लंघन करने वाले को अवश्य ही दंडित करेगा। इसराइल का इतिहास आने वाली पीढ़ियों के लिए चेतावनी और निर्देशन के लिए उल्लिखित किया जाना था। भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्वर्ग के परमेश्वर को एक निष्पक्ष शासक के रूप में देखना आवश्यक था, जो पाप को कभी भी न्यायसंगत नहीं ठहराता है, लेकिन बहुत कम है जो पाप की अत्यधिक पापमयता को समझते हैं। मनुष्य स्वयं को सांत्वना देता है कि परमेश्वर इतना भला है कि वो आज्ञा उल्लंघन करने वाले को दंड नहीं देगा, लेकिन बाइबल के इतिहास के प्रकाश में ये स्पष्ट है कि परमेश्वर की भलाई और उसका प्रेम उसे पाप को विश्व की शांति और खुशहाली के लिए घातक बुराई मानकर वैसा ही बर्ताव करने को वचनबद्ध करता है।
मूसा की सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता भी उसकी गलती के प्रतिफल को टाल नहीं सके। परमेश्वर ने लोगों के इससे गंभीर पाप भी क्षमा किए थे, लेकिन वह अगुवे के पापों के साथ वैसा बर्ताव नहीं कर सकता था जैसा कि उसका अनुसरण करने वालों के साथ करता।
उसने मूसा को धरती के सभी अन्य पुरुषों से अधिक सम्मानीय ठहराया था। उसने अपना तेज उस पर प्रकट किया था और उसके माध्यम से अपनी आज्ञाओं को इज़राइल तक पहुंचाया था। मूसा ने अधिक मात्रा में प्रकाश और ज्ञान का लाभ उठाया था, इसलिए उसका पाप और गंभीर हो गया था। पिछली सत्यनिष्ठा एक गलत कृत्य की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकती। मनुष्य को जितने अधिक विशेषाधिकार और प्रकाश प्रदान किए जाते हैं, उतना ही बड़ा उनका उत्तरदायित्व होता है। उसकी असफलता उतनी ही भारी होती है और उसका दंड उतना ही कठोर होता है।
मनुष्य के दृष्टिकोण से मूसा किसी जघन्य अपराध का दोषी नहीं था। उसका पाप साधारणतया होने वाले पापों में एक था।
भजन संहिता 106 आयत 33 में कहा गया है, मूसा बिना सोचे बोल उठा। मानवीय निर्णय के अनुसार यह साधारण प्रतीत हो सकता है, लेकिन यदि परमेश्वर ने अपने सबसे निष्ठावान और सम्मानीय दास के इस पाप के साथ इतनी कठोरता से व्यवहार किया, वो अन्य व्यक्तियों में इसे क्षमा नहीं करेगा। आत्म प्रशंसा की भावना अपने भाई बंधुओं की निंदा करने की प्रवृत्ति परमेश्वर को अप्रसन्न करती है। जो इन पापों में पड़ते हैं, वे परमेश्वर के काम को संदेहास्पद बना देते हैं और संदेहवादियों को उनके अविश्वास का बहाना दे देते हैं। जितना महत्वपूर्ण किसी का पद और जितना अधिक उसका प्रभाव होता है, उसे दीनता और धैर्यशीलता विकसित करने की उतनी ही अधिक आवश्यकता होती है।
यदि परमेश्वर की संतानों को, विशेषकर उन्हें जो उत्तरदायित्व वाले पदों पर कार्यरत है, परमेश्वर को द्वारा महिमा को स्वयं ले लेने को मनाया जा सकता है, तो शैतान अत्यंत प्रसन्न होता है। उसने विजय पाली होती है। इसी प्रकार उसका पतन हुआ था। इसी प्रकार वह दूसरे को विनाश की ओर प्रलोभित करने में सबसे अधिक सफल होता है। हमें शैतान की युक्तियों से सावधान करने के लिए परमेश्वर ने अपने वचन में आत्म प्रशंसा के खतरे का ज्ञान देने के लिए सबक दिए हैं। हमारे स्वभाव की ऐसी कोई तीव्र इच्छा नहीं, मस्तिष्क की ऐसी कोई क्षमता या हृदय को कोई ऐसा झुकाव नहीं जिसे प्रत्येक क्षण परमेश्वर के आत्मा के नियंत्रण में होने की आवश्यकता ना हो। मनुष्य को परमेश्वर द्वारा दी गई ऐसी कोई आशीष नहीं, ना ही उसके द्वारा अनुमति प्राप्त कोई परीक्षा है, सिवाय इसके कि यदि हम शैतान को तनिक भी सुअवसर दे तो वह हमें बर्बाद करने और सताने व प्रलोभित करने के लिए इन्हीं का प्रयोग कर सकता है और करेगा। अतः किसी के पास कितना ही आध्यात्मिक प्रकाश क्यों ना हो, उसे कितनी ही आशीषें और परमेश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त क्यों ना हो, उसे परमेश्वर के सम्मुख सर्वदा दीन होकर रहना चाहिए और यह प्रार्थना करते रहना चाहिए कि परमेश्वर उसके प्रत्येक विचार को निर्देशित करेगा और उसकी प्रत्येक तीव्र इच्छा को नियंत्रित करेगा।
वे सब जो धार्मिकता का दावा करते हैं, आत्मा सुरक्षा के लिए और सबसे अधिक उकसाहट की स्थिति में आत्मसंयम का अभ्यास करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। मूसा के ऊपर रखे गए उत्तरदायित्व का बोझ अधिक था। कुछ ही लोग होंगे जिन्हें उसके समान इतनी कठोरता से परखा जाएगा, फिर भी उसके पाप की क्षमा के लिए इसकी अनुमति नहीं दी गई। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए बहुतायत से प्रयोजन किया है। यदि वे उसके सामर्थ्य पर निर्भर करेंगे तो वे कभी भी परिस्थितियों का खिलौना नहीं बनेंगे। सबसे मोहक प्रलोभन भी पाप को क्षमा नहीं दिला सकता। मन और मस्तिष्क पर सहन करने को कितना ही दबाव क्यों ना हो, आज्ञा उल्लंघन हमारा निजी कृत्य है। किसी को पाप करने के लिए बाध्य करना पृथ्वी या नरक के बस में नहीं है। शैतान हमारे दुर्बल पक्ष पर प्रहार करता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि हम पराजित हों। आक्रमण कितना ही अप्रत्याशित या सशक्त क्यों ना हो, परमेश्वर ने हमारे लिए सहायता प्रदान की है। उसकी सामर्थ्य से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं।